मार्गदर्शन।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला मार्गदर्शन की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, ईरान में वैज्ञानिक विकास और खास तौर पर पिछले दशक में जो वैज्ञानिक विकास हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। मानो अमेरिका की ओर से लगाई गई अन्यायपूर्ण पाबंदियों के कारण ईरानी राष्ट्र के सामने एक स्वर्णिम अवसर मुहैया हुआ और ईरान के जवान वैज्ञानिक इस अंधकारमय दौर में सितारों की भांति चमके और अपनी वैज्ञानिक खोजों से ईरान का क्षेत्र सहित दुनिया में नाम रोशन किया।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह हिल उज़्मा सैयद अली खामने कहते हैं, हालिया दशकों में हमारी वैज्ञानिक प्रगति एक सच्चाई है। कुछ ने इसका लोहा माना तो कुछ ने इसका इनकार किया। ये एक सच्चाई है कि हमारे यहाँ दुनिया के औसत वैज्ञानिक विकास की तुलना में 13 गुना तेजी से वैज्ञानिक विकास हो रहा है।
9 अप्रैल सन 2006 को दुनिया ईरान के आधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी से संपन्न होने की खबर सुनकर हैरत में पड़ गई थी। इस हैरत की वजह यह थी कि इससे पहले तक दुनिया के सिर्फ कुछ विकसित देशों के पास ही ये प्रौद्योगिकी थी, इसलिए ईरान के नई पीढ़ी के सेंट्रीफ्यूज के साथ इस प्रौद्योगिकी से संपन्नता की खबर दुनिया के सामने हैरत की बात थी। इस खबर की घोषणा और उसके अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की ओर से पुष्टि से ईरान दुनिया में यूरेनियम संवर्धन की प्रौद्योगिकी से संपन्न देश के रूप में पहचाना जाने लगा। देश परमाणु क्षेत्र में इस महासफलता के जश्न में डूब गया और ईरान के राष्ट्रीय कैलेंडर में एक दिन को परमाणु प्रौद्योगिकी दिवस निर्धारित किया गया।
इस महासफलता के बाद इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह हिल उज़्मा सैयद अली खामनेई ने कहा, आज देश के जवान वैज्ञानिकों का आश्चर्य में डालने वाला एक और कारनामा परमाणु पदार्थ का संवर्धन करना है, जो दुनिया की गुप्त प्रौद्योगिकी में से एक है कि जिन पर बड़ी शक्तियों ने एकाधिकार जमा रखा है। ईरान के जवान वैज्ञानिकों ने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में अपने कारनामे से वास्तव में ईरानी राष्ट्र की दीर्घकालीन ऊर्जा जरूरत को सुनिश्चित बना दिया है कि ये ज्ञान हाथ से जाने न पाए और इस क्षेत्र से पीछे हटना 100% नुकसानदेह है।
ईरानी वैज्ञानिकों ने परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये कारनामा ऐसी हालत में अंजाम दिया जब दुनिया के अहम वैज्ञानिक केंद्रों ने ईरानी छात्रों व वैज्ञानिकों के लिए अपने द्वार बंद कर रखे थे, लेकिन वरिष्ठ नेता की ओर से आत्मविश्वास व साहस के लिए प्रेरणा और हम कर सकते हैं के नारे पर भरोसा इस बात का कारण बना कि परमाणु क्षेत्र में जवान वैज्ञानिक ये कारनामा अंजाम दें। वरिष्ठ नेता इस संदर्भ में एक अमेरिकी द्वारा लिखे गए एक लेख का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस लेख में ध्यान देने योग्य बिंदुओं का उल्लेख है। वरिष्ठ नेता कहते हैं, मैंने एक लेख पढ़ा जो एक अमरीकी अखबार से उद्धृत है कि जिसमें आया है कि परमाणु मामले में ईरान अजूबा है। इस लेख में आया है कि चीन ने परमाणु क्षेत्र में प्रगति के लिए किससे मदद दी, भारत और पाकिस्तान ने ये प्रौद्योगिकी किससे ली, लेकिन जब बात ईरान की आती है और ये सवाल होता है कि ईरान ने ये प्रौद्योगिकी किससे हासिल की, तो इस लेख में लेखक लिखता है किसी से नहीं। इस लेख में आगे आया है कि ईरान ने ऐसी हालत में परमाणु प्रौद्योगिकी हासिल की कि उस पर पाबंदी लगी हुई थी, उसे परमाणु क्षेत्र में प्रगति करने का मौका नहीं दिया जा रहा था और उसके खिलाफ लामबंदी भी हो रही थी। लेखक हमारे परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या का भी उल्लेख करते हैं। ये वे बातें हैं जो हमारे दुश्मन कह रहे हैं। ये लेख वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुआ है।
जी हाँ, उच्च चोटियों पर पहुंचना सिर्फ नारों व बातों से मुमकिन नहीं होता, बल्कि उसके लिए लक्ष्य का निर्धारण, उस दिशा में लगातार कदम उठाना और निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर महासफलता हासिल होती है। जैसा कि पवित्र कुरान के शरा नामक सूरे की आयत 5 और 6 में ईश्वर दो बार बल देकर कहता है, निश्चित रूप से हर कठिनाई के बाद आसानी है। हाँ, निश्चित रूप से हर कठिनाई के बाद आसानी है।
वरिष्ठ नेता इसी आयत को मद्देनजर रखकर विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने और देश के विकास में वैज्ञानिक प्रगति करने के लिए प्रेरित करते हैं। वरिष्ठ नेता अपने भाषण में बारंबार इस बिंदु पर बल देते हैं कि ईरान के जवान वैज्ञानिक जिस क्षेत्र में कोशिश करेंगे बड़ी वैज्ञानिक सफलताएं हासिल करेंगे।
वरिष्ठ नेता अयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी परमाणु क्षेत्र के बारे में कहते हैं, जिस क्षेत्र में आप अपनी ओर से कोशिश करेंगे दुश्मन समझ जाएगा कि पाबंदी लगाना निरर्थक व मूर्खतापूर्ण काम है। इसकी सीधी मिसाल 20% संवर्धित यूरेनियम पदार्थ की है कि जिसकी हमें तेहरान के शोध बिजली केंद्र के लिए बहुत जरूरत थी। देश का भंडार खत्म होने को था, ये बिजली घर बंद हो जाता, इस केंद्र में उत्पादित होने वाले रेडियो आइसोटोप लोगों को न मिल पाता। देश के अधिकारी कोशिश में लग गए कि 20% संवर्धन करना है। दुनिया के शक्तिशाली देश और उनमें सबसे आगे अमेरिका ने 20% संवर्धन के मार्ग में रुकावटें खड़ी की। ये घटना भी सुनने लायक है। उन्होंने क्या किया? हम इसे खरीदने के लिए तैयार थे। वे नाना प्रकार के बहाने बनाते थे, यहाँ तक कि इस्लामी गणतंत्र ईरान इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उसे 20% संवर्धित यूरेनियम का खुद ही उत्पादन करना होगा। लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो पाएगा। 20% उत्पादित होने पर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इससे ईंधन का उत्पादन हो पाएगा, अर्थात ईंधन का रॉड बन पाएगा। इस काम को भी इस्लामी गणतंत्र के जवान वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा से कर दिखाया। अब जब सबको समझ में आ गया कि इस्लामी गणतंत्र परमाणु प्रौद्योगिकी से संपन्न हो चुका है और उसने इसका एक उत्पाद बनाया है और उसे इस्तेमाल कर सकता है, वे हमसे विनती करते हैं कि ये चीज़ हम उनसे खरीदें। दूसरा कहता है, हमसे खरीद लीजिए। कह रहे हैं कि हम आपको बेचने के लिए तैयार हैं, आप उत्पादन न करें, दुनिया के ऐसे ही रूप हैं।
इस्लामी गणतंत्र ईरान सहित हर स्वाधीन व्यवस्था के खिलाफ दुनिया की छोटी बड़ी ताकतों की ओर से दबाव व बहानेबाजी इस व्यवस्था के मजबूत व कमज़ोर बिंदुओं के अधीन है। जहां आप कमज़ोर होंगे उनकी ओर से बहानेबाजी बढ़ जाएगी, जहां आप मजबूत होंगे आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, वे आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार अपनाएंगे, अधिक तर्कपूर्ण बात करेंगे। ये सभी मुश्किलों के हल की कुंजी है। ईरान के परमाणु क्षेत्र में प्रगति करने के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान के दुश्मनों में खासतौर पर अमेरिका और अतिग्रहणकारी ज़ायोनी शासन का व्यवहार ऐसा न था जिस पर हैरत जताई जाए। उन्होंने बड़ा सख्त दृष्टिकोण अपनाते हुए ईरान पर परमाणु हथियार के निर्माण का आरोप लगाया। हालांकि अमेरिका ने न सिर्फ ये कि सबसे ज़्यादा परमाणु बमों का भंडार लगा रखा है बल्कि अब तक वो दो बार इस महाविनाशकारी बम का इस्तेमाल भी कर चुका है। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बमबारी और उसके विनाशकारी परिणाम की बात किसी से ढकी छिपी नहीं है।
आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अमेरिकी सरकार, जिसके पास परमाणु हथियार सहित दूसरे महाविनाशकारी हथियार सबसे ज्यादा हैं और उनसे उनका इस्तेमाल भी किया है, आज परमाणु अप्रसार का ध्वजवाहक बनना चाहती है। उसने और उसकी पश्चिमी घटक सरकारों ने अधिग्रहणकारी ज़ायोनी शासन को परमाणु हथियार दिए और इस संवेदनशील क्षेत्र के लिए बड़े खतरे पैदा कर दिए हैं। लेकिन ये धूर्त समूह स्वाधीन देशों द्वारा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयोग को सहन नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि ये समूह रेडियो आइसोटोप सहित दूसरे शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए परमाणु ईंधन के उत्पादन का बहुत विरोध कर रहा है। ये समूह परमाणु हथियारों के उत्पादन के खतरे को बहाना बनाकर पेश कर रहा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के बारे में भी वे जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं। हम परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते, इसलिए नहीं कि ऐसा करने से अमेरिका नाराज़ होगा, बल्कि हमारी आस्था इससे रोकती है। हमारी आस्था है कि परमाणु हथियार मानवता के खिलाफ अपराध के समान है, इसलिए इनका निर्माण नहीं होना चाहिए और दुनिया में जितने परमाणु हथियार हैं सबको खत्म होना चाहिए।
आधुनिक व परमाणु प्रौद्योगिकी की प्राप्ति परमाणु अप्रसार संधि के सदस्य देशों का मूल अधिकार माना गया है कि ईरान भी इस संधि का हिस्सा है। इस संधि के अनुसार जिन देशों के पास आधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी है उनका कर्तव्य है कि वे सदस्य देशों की असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी की प्राप्ति में मदद करें। इस मदद के बदले में संबंधित देश इस बात के लिए प्रतिबद्ध होंगे कि परमाणु हथियार की प्रगति की कोशिश नहीं करेंगे।
अंत में ये कि आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई की नज़र में ये ईरानी राष्ट्र का अधिकार है कि उसने परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है उसकी रक्षा करे और इस क्षेत्र में और प्रगति करे। इस उपलब्धि के बारे में वरिष्ठ नेता के वक्तव्य से कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं।
हमारा ये कहना है कि परमाणु ऊर्जा या दूसरे शब्दों में परमाणु प्रौद्योगिकी, ईंधन चक्र की प्राप्ति और यूरेनियम संवर्धन की संभावना का बना रहना हमारा मूल अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि अगर आज हमने इस राष्ट्र के लिए इसकी आपूर्ति न की तो कल ये राष्ट्र विरोधियों और दुश्मनों की ओर हाथ फैलाने पर मजबूर होगा। अगर आज ईरानी राष्ट्र ने परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा हासिल न की तो कई साल बाद जब ये जवान रोजगार के क्षेत्र में सक्रिय होंगे, जिस दिन ईरानी राष्ट्र की आबादी दसियों लाख बढ़ चुकी होगी, उस दिन राष्ट्र अपनी मूल ज़रूरत को हासिल करने के लिए दूसरों और संभवतः दुश्मन की ओर हाथ फैलाने के लिए मजबूर होगा। उस वक्त राष्ट्र के सम्मान के बदले में उसे थोड़ी सी चीज दी जाएगी। हमने जोर जबरदस्ती को कबूल नहीं किया और ईरानी राष्ट्र को यह बात समझ लेनी चाहिए कि देश के अधिकारी इसे स्वीकार नहीं करेंगे और किसी कीमत पर हम इस धौंस धमकी से दबने वाले नहीं हैं।